22वां, मुझे चांद चाहिए। 1993, सुरेंद्र वर्मा। पृष्ठ संख्या 186। सुरेंद्र वर्मा हिंदी में राकेशोत्तर काल के प्रतिनिधि नाटककार माने जाते हैं, परंतु उनको सर्वाधिक ख्याति उनके बहुचर्चित उपन्यास मुझे चांद चाहिए के कारण मिली। यह उपन्यास शाहजहांपुर, दिल्ली, बंबई के कस्बाई महानगरीय नगर बोध को उद्घाटित करता है। वह अपनी अनुभव संपन्नता के लिए स्मरणीय रहेगा, परंतु ध्यान रहे, यह अनुभव संपन्नता एक विशिष्ट वर्ग के दायरे से प्रसूत हुई है। सांस्कृतिक एवं कलागत मूल्यों की पहचान भी नगर बोध का एक प्रमुख लक्षण है। अंततः रंगमंच एवं सिनेमा के तीखे नुकेले, अंतर विरोधी ज्वलनशील रुद्रात्मक लोकोपवादी प्रश्नों की टकराहट को रूपायित करने वाला यह उपन्यास कला क्षेत्र के महानगरीय सिंहावलोकन सा प्रतीत होता है। यह दिगर बात है कि उसमें निरूपित दृष्टि हजारों वर्षों से चल रहे पुरुषसत्तात समाज के पोषित पुरुषामोदिक नारी आदर्शवाद की प्रतिष्ठा के कारण डॉक्टर प्रभा खेतान तथा पंकज बिष्ट उसकी यथार्थ प्रतिगामी परिणतियों के कारण उसकी कटु आलोचना भी करते हैं। पृष्ठ संख्या 187। परंतु दूसरी तरफ डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव उपन्यास के नाटकीय रूपबंध तथा उसकी एक विशिष्ट नगर बोध संपन्नता के कारण भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। परंतु यहाँ यह तथ्य रेखांकित करने योग्य है कि वर्मा जी द्वारा आकलित नागरीय महानगरीय चित्रण नगरीय जीवन के स्थूल कलेवर को तो रेखांकित करता है, परंतु उसका एक सूक्ष्म अभिलक्षण नारी चेतना को अधिक विकसित नहीं करता। लेखक की नारी चेतना, अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, या नारी तुम केवल श्रद्धा हो, से आगे नहीं बढ़ पाती। यहाँ एक बार फिर इस विचार की अहमियत गहराती है कि रासोन्मुखी चेतना संपन्न कृति यदि प्रसिद्ध शैली शिल्प में आती है तो वह भी कम क्षतिपूर्ति खतरा नहीं है। यहाँ यह भी ध्यान रहे कि कृति में अंतर्निहित जीवन दृष्टि ही नहीं, प्रत्युत उस जीवन दर्शन की श्रेष्ठता पर कृति की श्रेष्ठता निर्भर करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने श्रद्धा तथा भक्ति निबंध में श्रद्धा की विविध कोटियों को बताते हुए साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा को निर्देशित किया है और उसे निकृष्ट प्रकार की श्रद्धा घोषित किया है। क्या प्रस्तुत उपन्यास के प्रति भाव का जो आकर्षण है वह उसकी साधन संपन्नता और सज्जनता के कारण नहीं है? पैराग्राफ चेंज। 570 पृष्ठों के इस वृहद उपन्यास की कुल कथा इतनी है कि उत्तर प्रदेश के एक सामान्य निम्न मध्यवर्गीय कस्बाई परिवेश की सिलबिल उर्फ यशोदा शर्मा उर्फ वर्षा विशिष्ट 54 सुल्तानगंज शाहजहांपुर से उठकर बंबई के वर्सोवा बीच स्थित सिल्वर सैंड के ऐश्वर्य मंडित फ्लैट में पहुंच जाती है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, पढ़िए गीता बनिए सीता और घर की बड़ी पतीली में भर भर भात पकाइए, या बच्चे जनकर जीवन संवारने वाली मानसिकता, या पति भक्ति करो हमेशा रहते जीवन, पति भक्ति सती साध्वी करती प्रणयन। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जैसी आदर्शवादिता से ऊपर उठकर वह बॉलीवुड और हॉलीवुड की एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री बन जाती है। नवी कक्षा में यशोदा शर्मा से वर्षा वशिष्ठ के रूप में नामांतरण उसका प्रथम साहस था। कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में सौम्य मुद्रा का अभिनय दूसरा साहस, तथा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साक्षात्कार के लिए घर परिवार से विद्रोह कर दिल्ली पहुंचना उसका तीसरा साहस था। रंगमंच के प्रारंभिक संघर्ष के बाद तो वह निरंतर सफलता के शिखरों को सर करती है। सफलता और केवल सफलता वर्षा के जीवन का ग्राफ यही सूचित करता है। सामान्य पृष्ठभूमि वाली वर्षा रंगमंच की प्रतिष्ठित अभिनेत्री, कला फिल्म की बहुचर्चित हीरोइन तथा अंततः बॉलीवुड के व्यावसायिक फिल्मों की टॉप मोस्ट अभिनेत्री बन जाती है। जीवन में उसे पहला ब्रेक दिया दिव्या कात्याल ने। शाहजहांपुर जैसे कस्बाई परिवेश में संस्कृत नाटक सौम्य मुद्रा का अभिनय निश्चय ही एक सनसनीखेज मामला है। उसके पिता संस्कृत के अध्यापक हैं और पुराने रूढ़िवादी संस्कारों से चिपके हुए हैं। नाटक में अभिनय करने को वे नौटंकी में काम करने के बराबर मानते हैं। उनको पहला झटका तो तभी लगा था जब सिलविल ने अपना नाम बदलवा दिया था। शाहजहांपुर के कस्बाई वातावरण से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंचना और वहां भी अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ना निश्चय ही वर्षा वशिष्ठ के चरित्र को एक ऊंचाई और गरिमा प्रदान करता है। पैराग्राफ चेंज, पृष्ठ संख्या 188। सामान्य पृष्ठभूमि और परिवेश वाली निम्न मध्यवर्गीय वर्षा जहां इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है, वहां अपेक्षाकृत संपन्न पृष्ठभूमि वाला प्रतिभा संपन्न हर्ष असफलता की काली नियति का शिकार होकर मायूसी के अंधेरों में गुम हो जाता है। अंत में हर्ष अपनी ही निराशाओं में गुम होकर आत्महत्या कर लेता है। यहाँ लेखक की निष्पत्ति कदाचित यही है कि सही जीवन मूल्य या कलागत मूल्यों से प्रतिबद्धता हर्ष की असफलता के कारण दूसरे शब्दों में जीवन में कुछ सही कर गुजरने के लिए भी भ्रष्टता के अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। और एक बार ऐसा होने पर क्या मनुष्य में सत्य, न्याय और विवेक के लिए कुछ कर गुजरने का मद्दा शेष रहेगा? उपन्यास में निरूपित यह अंतर्दृष्टि एक बहस का मुद्दा हो सकती है। यह भी एक आश्चर्य की बात है कि वर्षा वशिष्ठ को बॉलीवुड की नंबर वन अभिनेत्री बनने में अधिक पापड़ नहीं बेलने पड़ते। बम्बैया और मद्रासी फिल्मों की नायिकाओं की भांति हर्ष के प्रति उसकी वफादारी और पवित्रता बनी रहती है। जहां पग पग पर फिसलन होती है, वहां वर्षा वशिष्ठ चट्टान की भांति अडिग खड़ी रहती है और उस काजर की कोठरी में भी बेदाग बनी रहती है। और कुछ लोगों को वर्षा वशिष्ठ का यह कदम साहसिक लग सकता है कि वह हर्ष के बच्चे की कुमारी माँ बनना पसंद करती है, परंतु उसका यह निर्णय आधुनिक विचारों के तहत नहीं बल्कि छायावादी नारी भावुकता के तहत लिया गया निर्णय है। हर्ष से विवाह न होने पर भी वह मानो उसे अपना पति स्वीकार कर लेती है और मध्यकालीन सती आदर्श को ढोते हुए शेष जिंदगी उसकी स्मृतियों में बिता देना चाहती है। इस प्रकार वर्षा वशिष्ठ की सोच मध्यकालीन नारी सोच से एकदम अलग और आगे नहीं है। हर्ष की बहन सुजाता तो वर्षा से कहती भी है, इन्वर्टेड कमापन, अभी तुम्हारी सारी जिंदगी सामने पड़ी है। हो सकता है आगे चलकर कोई ऐसा तुम्हें मिले जिसके साथ तुम कानूनी तौर पर अपनी जिंदगी बांटना चाहो, तब तुम्हें अपने इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। तुम इससे छुटकारा क्यों नहीं पा लेती? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ मुझे जान चाहिए, सुरेंद्र वर्मा, पृष्ठ संख्या 555। हालांकि सुजाता के प्रस्ताव में सहानुभूति नहीं प्रत्युत खुदगर्जी है, सुजाता को उत्तर देते हुए वर्षा कहती है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मुझे लंबे समय तक शून्य में जीना है और अब यही मेरा सहारा होगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ मुझे जान चाहिए, पृष्ठ संख्या 555। वर्षा के इस उत्तर के सामने जब सुजाता प्रति प्रश्न करती है कि होने वाले बच्चे की परवरिश में यदि बघेन परिवार सहायता न करना चाहे तो वह क्या करेगी, सुजाता के इस प्रश्न पर वर्षा तिलमिला उठती है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, आपसे मदद मांगी किसने है? मैं जैसी दीनहीन पैदा हुई थी, मेरा बच्चा वैसा पैदा नहीं होगा। अब अपनी माँ के घर में मुंह में चांदी के चम्मच के साथ पैदा होगा, जैसा उसका बाप हुआ था। ऐसी ओछी बात तो चित्र नगरी में पैदा होने वाले के मन में आती है। आप तो दिल्ली के प्रतिष्ठित परिवार के लोग हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ मुझे जान चाहिए, पृष्ठ संख्या 556। इसी पृष्ठ पर एक वाक्य है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, प्रकृति में स्त्री इसलिए विशिष्ट है क्योंकि वह जननी है, वर्षा ने सोचा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ वही। वस्तुतः यह सब शास्त्रार्थ है जिनके द्वारा अद्यावधि में स्त्री आहत वंचित होती रही है। इस प्रकार लेखक ने उपन्यास के अंत में एक आदर्शवादी मोड़ दिया है जो पुरुषवादी चिंतन के अनुरूप है। समूचे उपन्यास में वर्षा को लेकर हर्ष बहुत ही लापरवाह रहा है। वर्षा की तरक्की में भी उसका कोई खास सहयोग नहीं, बल्कि बाद में तो वह कई बार अवरोही बना है, पृष्ठ संख्या 189। परंतु कोई लड़की यदि किसी लड़के के लिए त्याग करती है, व्रत उपवास रखती है, तो पुरुषवादी संस्थानों को वह बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर भी वर्षा का यह निर्णय पुरुषवादी चिंतकों के होठों पर हास्य लहरी उत्पन्न कर देता है। पैराग्राफ चेंज। अपनी वैचारिकता में जहाँ यह उपन्यास छायावादी नारी चेतना से आगे नहीं बढ़ता, वहाँ उसमें वर्णित बहुत से उपकरणों के कारण सामान्य पाठक घृणित होकर उसमें आधुनिक भावबोध को अन्वेषित करने का यत्न कर सकता है, क्योंकि रंगमंच, नाट्यशास्त्र, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, रविंद्र भवन, रिपर्टरी, दिल्ली और बम्बई का कला जगत, कला सिनेमा, व्यवसायिक सिनेमा, संस्कृत पाश्चात्य नाट्य परंपरा, संस्कृत विशिष्ट कालिदास तथा अंग्रेजी साहित्य और सुदरक चेखव, शेक्सपियर, गालिब आदि के विस्तृत और ब्यौरे बॉलीवुड से हॉलीवुड के अभिनेताओं तथा दिग्दर्शकों तथा विख्याति चर्चित अंग्रेजी फिल्मों के ब्यौरे, दिल्ली और बम्बई की जो गर्मियाँ, नाट्य समीक्षाएं, फिल्म समस्याएं, कला जगत की राजनीति के दाव पेच, पीली पत्रकारिता और गॉसिपिज्म, स्पर्डम और उसका खोखलापन जैसे अनेक विद ब्यौरे से पाठक लेखक की बहुश्रुतता से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। बहरहाल रंगमंचीय एवं सिनेमाई अनुभव जगत शहर के उच्च शिक्षा वर्ग का रूपायन दिव्य कात्यायनी, शिवानी, सुजाता, अनुपमा, कंचन प्रभा, चार्ल्स श्री जैसी आधुनिकाएं, फिएट, टोयोटा और मर्सिडीज जैसी कारें, 555 डन हील तथा मालवरो जैसे सिगरेट, मार्टिनी जानी वॉकर, हुराफ नैमसेन, ईगल रैमर, डायरेक्टर स्पेशल, रॉयल चैलेंज, चेक डेनियल, ओल्ड मॉक जैसी शराब की ब्रांड तथा कॉकटेल, ओंद रॉक्स जैसी शराब की पार्टियों से जुड़े हुए शब्द उच्च महानगरीय जीवन का बोध कराते हैं। उपन्यास की समृद्ध काव्यात्मक भाषा उसका एक अलग पक्ष है। इस प्रकार जहाँ तक भाषिक संरचना और शैल्पिक रूपबंध का प्रश्न है, कला पक्ष की गरिष्ठता और वरिष्ठता का प्रश्न है, निःसंदेह उपन्यास सराहनीय बन पड़ा है। परंतु जहाँ तक उसके भाव पक्ष और नारी चिंतन का पक्ष है, सुरेंद्र वर्मा उसमें कोई नया इजाफा नहीं कर सके हैं। 23वां छिन्न मस्ता 1994 प्रभा खेतान पृष्ठ संख्या 189। प्रभा खेतान का यह उपन्यास एक नए परिवेश को लेकर आता है। मारवाड़ी समाज उद्यमी, व्यवसायिक और कंजूस माना जाता है। इस समाज का इसी रूप में वर्णन हमारे कथा साहित्य में यदा कदा होता रहा है। प्रभा खेतान उसके एक दूसरे पक्ष को लेकर आई हैं। यह उपन्यास प्रिया नामक एक ऐसी नारी का आख्यान है जो निरंतर शोषण के पाटों के बीच पिसती रहती है। यहाँ कोई आर्थिक समस्या या व्यवस्था नहीं है। प्रिया व्यवसाय करती है, कमाती है, पर टेरा कोटा की मीति, डाक बंगला की ईरा या 55 खंभे लाल दीवारे की सुषमा जैसी उसकी कोई पारिवारिक व्यवस्था नहीं है। वह खाते पीते संपन्न मारवाड़ी परिवार की बेटी और बहू रही है। पैराग्राफ चेंज। परंतु प्रिया का शोषण हुआ है समाज की पुरानी जर्जर मान्यताओं के द्वारा भी और पुरुष की आदिम भूख से भी। सूरजमुखी अंधेरे के की रतिका की भांति प्रिया का भी 7-8 साल की उम्र में बलात्कार होता है। पृष्ठ संख्या 190। इस फटे हुए शैशव को जिंदगी भर ढोने के लिए वह विवश है, परंतु यह घृणित कार्य स्वयं उसके सगे भाई द्वारा हुआ है। यथा इन्वर्टेड कॉमा ओपन अरी दैयारी ई का भइल, ई खून कहाँ से, अभय तो 10वां बरस लगा है, अरे भगवान हमार बिटिया का ई का किए, दाई माँ यह अम्मा वाला खून नहीं, वह जो हर महीने होता है। तब दाई माँ की आवाज में दहशत थी, बड़े भैया ने आज मुझे, अरे जालिम, अरे कसाई, अपनी सगी बहन को भी नहीं छोड़ा, हम तो ओकर हाल सब जानत हई, बहू जी का डर से कुछ बोला नहीं जात। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ छिन्न मस्ता प्रभा खेतान पृष्ठ संख्या 17-18। पैराग्राफ चेंज। प्रिया के पांच भाई बहन थे, तीन बहनें सुमित्रा, सरला और सरोज तथा दो भाई, बड़े भैया विजय और अजय। प्रिया के समय उसकी माँ को उम्मीद थी कि लड़का होगा, परंतु लड़की होने पर जो निराशा हुई तो जिंदगी भर के लिए खाट पकड़ ली। प्रिया को माँ का प्यार कभी नहीं मिला, उसका लालन पालन दाई माँ ने ही किया। पूरे घर में उपेक्षिता बच्ची के रूप में उसका बचपन बीता। बाबूजी बहुत प्यार करते थे, परंतु व्यवसायिक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या हो गई। अम्मा तथा विजय ने घर को किसी तरह संभाला। प्रिया का विवाह लखपति घराने में हुआ। पति नरेंद्र शुरू में तो प्यार करता था, उसके व्यक्तित्व विकास के लिए व्यवसाय करने की छूट भी देता है। प्रिया एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करती है, परंतु बाद में उसकी व्यवस्थाओं को लेकर चिढ़ता है, जलील करता है, पीड़ित करता है। प्रिया के हिस्से में आती है व्यथा, यंत्रणा और पीड़ा। उपन्यास में एक स्थान पर कहा गया है, इन्वर्टेड कॉमापेन, औरत कहाँ नहीं रोती। हाड़ मास से बनी ये औरतें अपने तरीके से जिंदगी जीने की कोशिश में छटपटाती ये औरतें, हजारों सालों से इनके ये आंसू बहते आ रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ छिन्नमस्ता, प्रभा खेतान, द्वितीय फ्लैप से। पैराग्राफ चेंज। प्रिया सोचती है कि समाज के जिन बर्बर मर्यादाओं और शक्तियों के सामने एक दिन वह मेमने की तरह मिमियाती रही थी, वे देखें कि नारी सदा ऐसी ही निरीह नहीं रहेगी। और प्रिया सचमुच उभरती है उस निरीहता से और एक सबल नारी के रूप में उपस्थित होती है। इस प्रकार यह नारी चेतना को उभारने वाला उपन्यास है। पैराग्राफ चेंज। प्रिया के पति नरेंद्र का यह कथन पुरुष मानस का ही परिचय देता है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। दरअसल तुम्हें इतनी खुली छूट देने की गलती मेरी ही थी, मुझे पहले ही चिड़िया के पंख काट डालने चाहिए थे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ छिन्नमस्ता, प्रभा खेतान, पृष्ठ संख्या 11। इस प्रकार यह एक ऐसा उपन्यास है जिसमें नारी अस्मिता की जद्दोजहद को अभिव्यक्ति मिली है।